ये आकाशवाणी है। अब आप पूनम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है। ब्राजीलिया में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों पर चर्चा हो रही है। इसके बाद दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी, गोपनीय सूचना साझा करने, नवीनीकरण ऊर्जा और कृषि अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले श्री मोदी का अल्वोराडा पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के साथ उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरो की बहुत ही उपयोगी और लाभकारी यात्रा पूरी करने के बाद कल रात ब्राजीलिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत किया गया और बटाला मुंडो बैंड ने उनके समक्ष पारंपरिक ब्राजीलियाई सांबा रेगे का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैंड का संगीत एफ्रो ब्राजीलियन सामंजस्य को बढ़ावा देने का एक वैश्विक प्रयास है। इस अवसर पर भारतीय प्रवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 27 वर्षों बाद ये नामीबिया की तीसरी यात्रा होगी। श्री मोदी नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नेदेतवा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। उनका नामीबिया की संसद को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में गणना प्रपत्रों के संग्रह का कार्य 25 जुलाई की समय सीमा से पहले ही पूरा हो जाएगा। आयोग ने कहा कि पहले 14 दिनों में लगभग 47% गणना प्रपत्र एकत्र किए गए हैं। आयोग ने कहा कि इस काम में 20,000 से अधिक बूथ स्तरों के अधिकारियों को लगाया गया है। इस कार्य में सहायता के लिए लगभग 4,00,000 स्वयंसेवक, जिनमें सरकारी अधिकारी, एनसीसी कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य भी शामिल हैं, जो पुनरीक्षण प्रक्रिया में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, बीमार और कमजोर लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज दिल्ली में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संशोधित मतदाता सूची आवश्यक है। सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। देश में अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4,78,00,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं और 70,000 से ज्यादा पेड़ों को प्रत्यारोपित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गलियारे पर एक पेड़ माँ के नाम के दूसरे चरण अभियान का शुभारंभ किया। श्री गडकरी ने बताया कि अब कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा रहा है।
दिल्ली में 4 कचरे की टेकड़ियां है और ये पूरी टेकड़ियां जो है ये नष्ट करने का हमने संकल्प किया है, और इसलिए आने वाले समय में जो रोड डेवलपमेंट होगा, पूरे देश में अभी तक हमने 80,00,000 टन कचरा रोड में डाल दिया है, जिसके कारण गाजीपुर के टेकड़ी का जो हाइट थी वो 7 मीटर से कम हुई है। जो हमारे क्रैश बैरियर है हमने वो बाम्बू के बनाए हैं और 20 किलोमीटर कम से कम उसके भी पूरे हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच के लिए भाजपा द्वारा गठित समिति ने पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपी गई रिपोर्ट में ये बात कही। समिति के सदस्य सत्यपाल ने नई दिल्ली में कहा कि पुलिस ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है।
हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जाकर के देखा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई कि पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती। मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसा केस देखा, FIR रजिस्टर हुई, लड़की के हाथ की कंप्लेंट है और उसमें उन्होंने आरोपियों के बारे में जो नाम लिखे वो पुलिस ने इरेज कर दिए। पुलिस ने इरेज करने के बाद उसकी जगह कहीं जे लिख दिया, कहीं एम लिख दिया, कहीं एम लिख दिया।
समिति ने मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की सिफारिश की है। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं और इस तरह से अपने करियर में पहली बार नंबर 1 गेंदबाज बनने के करीब आ गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।